नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का यह निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार स्नातक, स्नातोत्तर और अति विशिष्ट चिकित्सा सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कार्ययोजना के हिस्से के रूप में सरकार ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नई परियोजनाएं, पुराने संस्थानों का विकास और स्नातोत्तर तथा उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों का विस्तार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका और गुरू गोविंद सिंह अस्पताल से जुड़े प्रत्येक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150 एमबीबीएस सीटें प्रस्तावित हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत गणना का चरण कल पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए, 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। 24 अगस्त से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी होगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत युवा मामले और खेल मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये बैठक ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के युवा नेताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, स्वयंसेवकों और परिवर्तनकर्ताओं को एक साथ लाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि विषयगत चर्चाओं, संवाद सत्रों और संपर्क बढ़ाने के अवसरों के माध्यम से शिखर सम्मेलन युवाओं को विचारों का आदान प्रदान करने, समाधान प्रस्तुत करने और व्यापक ब्रिक्स प्रक्रिया के भीतर विचार के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में 5 दिवसीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यवसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरीन से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा हुई। इसमें अनुसंधान और विकास विस्तार तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग करना शामिल है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के अंतर्गत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका के साथ कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहती हैं तो वो हुर्मुज जलडमरू मध्य में पूरी तरह से आक्रामक सैन्य रुख अपना सकता है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर वाशिंगटन अगले कुछ हफ्तों में अंतरिम समझौते को लागू नहीं करता तो ईरान अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमरीका के बीच स्थायी शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ी हैं। सोमालिया के बेदुआ में सरकारी बलों ने एक हमले को नाकाम करते हुए अल शबाब के लगभग 30 आतंकवादियों को मार गिराया। कई अन्य को गिरफ्तार किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आतंकवादियों ने सोमालिया के राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए वाहनों में रखे विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला हॉकी टीम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन में अपने दूसरे पूल डी मैच में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। भारत ने ओलंपिक में रजत पदक विजेता चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।